आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर में पनकी पावर प्लांट और मेट्रो के दूसरे फेज सहित कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर की सुनवाई। केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए मांगा और समय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा। प्रदेश के हर जिले में प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय बनाने पर दिया जोर। और प्रदेश में सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी, लागू हुई नई कीमत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 24 अप्रैल को कानपुर आ रहे हैं। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कल परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अपने प्रस्तावित दौरे पर जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पनकी पावर प्लांट और मेट्रो के दूसरे फेज समेत 200 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
जनपद में शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी भ्रमण प्रस्तावित है और जो एक हमारी महत्वाकांक्षी योजना है कानपुर मेट्रो की, जिसका एक फेज पहले इनॉग्रेट हो चुका है और उसी क्रम में जो कानपुर सेंट्रल से चुन्नीगंज का सेक्शन है उसका भी लोकार्पण होना है। उसके अलावा जो हमारा नेवेली पावर प्लांट है घाटमपुर में, उसकी 650 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण होना है और पनकी का भी, और इसके अलावा भी करीब 200-250 हमारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। न्यायालय ने इस पर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। केंद्र ने न्यायालय द्वारा उठाए गए 3 बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय की मांग की। शीर्ष न्यायालय अब इस मामले पर आज सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वक्फ बाय यूजर को कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसी वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने नए वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार किया। पीठ ने 3 प्रमुख बिंदु उठाए। न्यायालय ने कहा कि जब तक इस कानून पर सुनवाई हो रही है तब तक वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड हों। न्यायालय ने कहा कि वह संशोधन अधिनियम के इस प्रावधान को भी प्रभावी नहीं होने देगी कि जिलाधिकारी द्वारा संपत्ति के सरकारी भूमि होने या नहीं होने के बारे में जांच जारी रहने तक वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उनके नाम की सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को की गई है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क कल लखनऊ में संभल हिंसा मामले में गठित न्यायिक आयोग के सामने प्रस्तुत हुए। यह पेशी पिछले वर्ष नवंबर 2024 में संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के सिलसिले में हो रही है। आयोग ने सपा सांसद से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। उन्हें आज दोपहर 2 बजे फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सपा सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है। उन्हें उम्मीद है कि सही तरह से जांच से उन्हें इंसाफ मिलेगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कल ग्रेटर नोएडा में 4 दिवसीय दिल्ली स्प्रिंग मेला 2025 का शुभारंभ किया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की तरफ से आयोजित यह मेला इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 3000 से अधिक हस्तशिल्प उत्पादक और 110 देशों के खरीदार शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश के असंगठित हस्तशिल्प बाजार को संगठित कर विदेशों तक पहुँचाया जाए।
45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का मार्केट है, लेकिन मुझे ये डोमेस्टिक मार्केट जो 75 बिलियन डॉलर का है, इसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके इसे विदेशों तक पहुंचाना।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _ GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जिलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित करने के साथ हर जनपद में एक एक कार्यालय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां अधिक हैं, वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए दौर के पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बोर्ड में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, हैजार्ड वेस्ट, ई वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन सेल का गठन किया जाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
मुख्यमंत्री ने कल नगर विकास विभाग में संचालित परियोजनाओं की भी समीक्षा की और भावी कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नगरों में 15 वर्ष से अधिक समय तक किसी भी डीजल या CNG बस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही सिटी बस सेवा में निजी ई बस संचालकों को भी अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्किंग के नाम पर कहीं भी वसूली नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बरसात से पहले सभी नगरीय निकायों में ड्रेनेज व्यवस्था ठीक कराने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों की आय बढ़ाने, खाली पदों को भरने और स्ट्रीट डॉग की समस्या के अस्थायी समाधान पर जोर दिया। सभी जिला मुख्यालय वाले नगर निकायों को स्मार्ट नगर पालिका के तौर पर विकसित करने और प्रयागराज में वेस्ट मटेरियल से तैयार शिवालिक पार्क मॉडल को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश में CNG की कीमत में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ोतरी के बाद लखनऊ और आगरा में CNG के दाम 97.75 रुपये प्रति किलो हो गए हैं, जबकि सुल्तानपुर, उन्नाव और अयोध्या में CNG की कीमत बढ़ोतरी के बाद 95 रुपये प्रति किलो हो गई है। नई कीमतें कल से लागू हो गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेलकूद महाकुंभ प्रतियोगिता 2025 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी कल भाजपा के लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने दी। उन्होंने कहा कि सांसद खेलकूद महाकुंभ के लिए लखनऊ को कई जोन में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों और अभिभावकों को परिषद के नाम से किए जा रहे फर्जी कॉल से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ऐसे कॉल्स के जरिए वर्ष 2025 में हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में पैसे देने पर अंक बढ़ाने का प्रलोभन दिया जा रहा है। परिषद के सचिव भगवती सिंह ने स्पष्ट किया है कि ऐसे फोन कॉल साइबर ठगों द्वारा किए जा रहे हैं और उनका माध्यमिक शिक्षा परिषद से कोई लेना देना नहीं है। परिषद द्वारा इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के जरिए लोगों से अपील की गई है कि ऐसी कॉल्स आने पर तत्काल अपने जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित कर दें। वेब्स XR क्रिएटर हैकथॉन में विजेता 5 टीमों में प्रदेश की टीम ने भी जगह बनाई है। ई कॉमर्स रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में शामिल हुई टीम EMO ने अपने प्रोजेक्ट हेवन स्टेट के लिए पुरस्कार जीता है। टीम के प्रतिभागी उत्कर्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने युवाओं को वेब्स जैसा वैश्विक मंच प्रदान करके अपनी प्रतिभा दर्शाने का एक बड़ा अवसर दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर में पनकी पावर प्लांट और मेट्रो के दूसरे फेज सहित कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर की सुनवाई। केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए मांगा और समय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा। प्रदेश के हर जिले में प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय बनाने पर दिया जोर। और प्रदेश में सीएनजी की कीमत में 1 रुपये प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी, लागू हुई नई कीमत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।